भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी ये शिवजी बोल रहे हैं, सुमुखी पार्वती को शिवजी कह रहे हैं। सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी के नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगरी है, जहां मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगरी में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजाओं का अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ जाते थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोधाश का रसास्वादन में सदा आसक्त तो होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा, प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियो खेती में होने वाले छह प्रकार की उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था, और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बाबली हुए और प्रोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग की देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंखे हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के समय उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि दो तीन हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबंध करके वो कहा, अरे भाई भद्राश्य, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जनश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आकांक्षा है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंस के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों को अवहेला ना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बात सुनकर राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छात से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा, रैकों को यहां ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर महानामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगरी से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वो गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तद अनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्र में वो तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवताओं और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगरी जमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। ये सब तीर्थ के निवास से परिपूर्ण है, परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वो पवित्र वृक्ष और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वो परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं। जहां ब्राह्मणों को शास्त्रीय आलाप सुनकर मुक्त मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धूलते रहने पर भी अपनी काली मां नहीं छोड़ता। जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां मानिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मानिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव को पूजा किया करता था। तभी से उनका नाम मानिकेश्वर हो गया था। उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रख के एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंकों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। उसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्ह से उसने शीघ्र ही रैको को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा सच्छन विचरने वाले हैं, फिर यहां किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैका ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारे मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैका के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी की वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने दो खच्चरियों से जूती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1,000 गौ भी ले ले। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहां रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतिये के हार और ये दूध देने वाली गाय भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक को दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हुए होइए। भगवान, आप में ये अद्भुत महात्मा कैसे आया, प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तद अनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने जत्नपूर्वक महात्मा रैको के गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैको भी भगवान मानिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान कर देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वो भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इससे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता की ये गीता महात्मा समझ में मैंने कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी को? सब समझ रहे हो? हाँ, ये तो 6 अध्याय पाठ करने में क्या होता है? हाँ, भगवत धाम जा सकते, केवल 6 अध्याय पाठ करने से ही। तो ऐसे देखो गीता का एक एक अध्याय का कितनी महात्म्य है, एक एक अध्याय का इतना महिमा है। तो जब पूरा 18 अध्याय पाठ कर लेते हैं तो उसको क्या कहना। श्रीमद् भागवत गीता षष्ठ अध्याय ध्यान योग। श्री भगवान उवाच, अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति य स सन्नासी च योगी च निरग्नेर्न चाक्रियः। जं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं बुद्धि पाण्डव न हि सन्नस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। आरुरुक्ष ईश्वर मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षम कारणम उच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मश्यनुसज्यते सर्वसंकल्प सन्नासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरिरात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मैव हि आत्मनो बन्धु आत्मैव हरिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य जेनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवः जीतात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानवमानये ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः सुरीन्मित्रार्युदासीनम् मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं लहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा नीराशीरपरिग्रह शूचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम् आत्मनः नातुच्छित्तं नातिनीचं चैलाजिनो पुषोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जा योगम् आत्मविशुद्धये समङ्कायो शिरग्रीवम् धारयन्नचलम् स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नाशिकाकरम् स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनो संयम मच्चित्त युक्त आशितो मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगीनियतमानसः शान्तिं निर्माणपरां मत्संस्थाम् अधिगच्छति नातृष्णतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चारणम् युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तशब्दावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा वीर्यतं चित्तम् आत्मन्नेव प्रतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपनिवातस्थो नेत्रते सोपमास्मितः योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति
सुखमत्यन्तिकं जत्वत् बुद्धिग्राह्यं मतिन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं शीतश्चलति तत्रतः जं लब्धा च परं लाभं मन्नति नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि चलते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंयुतं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्विन्नचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् तक्ता सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्राम विनीयम् समन्तः शनैः शनैरुपपर्वे बुद्ध्या धृतिर्विहीनतया आत्मसंस्थानं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं मन्दिरम् ततोस्ततो नियमनित आत्मन्नेव वसेनये प्रशान्तमनसं हीयनं योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कर्तमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मैवं मेन सर्वत्र क्षमं पश्यति योऽर्जुनः सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन युवानां योऽयं योगस्तया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्थितिं स्थिरम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्गृहम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम् श्रीभगवानुवाच अशंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्को वाक्तुम् आयतः अर्जुन युवाच आयतु श्रद्धया पेत योगश्चलितमानस अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्णा गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुख ब्रह्मणोपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्तस्य चिन्ता न वंदते श्री भगवान वाच पार्थ नैदेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनां कुले भवतु हीमताम् एतद्भि दुर्लभोकरम् लोके जन्मजगदृशम् तत्रोतं बुद्धिजन्योगं लभते पूर्वदेहिकं जगते च ततो भूय संसिद्धो गुरुनन्दनः पूर्वभाषेण तेनैव ह्रियते अवशोऽपि स जिज्ञासोरपि योगस्य शब्दब्रह्मापि वर्तते प्रयत्नाद् जतमानस्तु योगी संशुद्धपुरुषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो जातु परां गति तपःसिद्धोऽधिको योगी ज्ञानिभ्यश्चापि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः योगिनामोऽपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते युवा स्वामे युक्तोत्तमोऽहम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोग नाम षष्ठाध्याय।
षष्ठाध्याय का हिंदी अनुवाद ध्यान योग। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनाशक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो वही सन्यासी और असली योगी है। ये नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधना कहलाता है और योग शुद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योग रूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपने उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का भिन्न है और बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कक्कड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वो और भी उन्नत माना जाता है। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो, न तो बहुत नीचा, न बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा स्थिर को सीधा रखे और नाक के अगले स्थिर पर सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म से निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने को कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमद प्रमद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता है, ये है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वो दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वो इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वो रजोगुण से परे हो जाता है। वो परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी हैं जो अपने तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्णा, चूंकि मन चंचल उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार का विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्य में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वो ऐसी योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना का पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। आपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वो ना चाहते हुए भी स्वतः योग की नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्र के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततः गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। मुझसे परम अंतरंग रूप में जो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो 6 अध्याय में ध्यान योग का वर्णन हुआ है। ध्यान योग का और एक नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग का शुरुआत कैसे होता है, अष्टांग योग का शुरुआत होता है एक निर्जन स्थान में जाकर, मतलब लोकालय में रहकर अष्टांग योग साधन संभव नहीं होता है। लोग को कहीं दूर चला जाना, जंगल में या पर्वत में या कोई पवित्र नदी के तट पर एकांत निर्जन स्थान में रहकर उनको योग अभ्यास करना चाहिए। तो ये योग का जो पद्धति है उसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से भगवान करने के पश्चात जब बताया, योग का उद्देश्य होता है मन को संयत, मन संयम, योग चित्त वृत्ति निरोधा। ये योग का प्रथम सूत्र है। पतंजलि का योग का प्रथम सूत्र है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का मतलब है चित्त का मतलब होता है मन, और वृत्ति का मतलब होता है चिंतन। तो चिंतन को रोकना, निरोध करना, मन में कोई चिंतन नहीं रहेगा। चित्त का वृत्ति का निरोध का ही नाम है जो मन को दमन करने के लिए जो प्रक्रिया है उसे ही योग कहा जाता है। तो तो जब भगवान ऐसे बताया कैसे मन को संयम करना चाहिए, मन संयम कैसे करना चाहिए, तब अर्जुन क्या बोला, यह असंभव है, चंचलो ही मन कृष्ण प्रमाथी बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ने बायोरिव सुदुष्कर। मन को दमन करना वायु को दमन करने से भी कठिन है। तस्याहं चं, क्योंकि मन चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण, मन चंचल है। हम देखते हैं मन को वश में लाना बहुत ही कठिन है। कितने बार हमें ये सवाल पूछते हैं कि महाराज जप कर रहा हूं, बल्कि मन तो इधर उधर भाग रहा, इसका ही मतलब है चंचल, भाग रहे हैं। तो ऐसे मन को स्थिर करना, एकाग्र करना, योगी एक बिंदु में स्थिर करता है, जैसे यहां वर्णन हुआ है। बल्कि वो बिंदु कौन है, वो केंद्र बिंदु है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अर्थात मन भगवान के चरण कमल में ही स्थिर रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। अर्जुन बोला मेरे लिए ये संभव नहीं हो। वायु रिव सुदुष्कर, वायु को जैसा दमन करना कठिन है, वायु को दमन करना, कोई वायु को दमन कर सकता है नहीं, तो वैसे ही मन को दमन करना कठिन है। तो भगवान क्या बोला, भगवान बताया, हां सही, बल्कि अभ्यासे न तु पुंसे, हाँ ये जो योग का जो पद्धति है इसको अभ्यास करने से ये मन वश में आए। तो वैसे भगवान मन को वश करने का तरीका अभ्यास के द्वारा वर्णन जब किया, तब अर्जुन का मन में एक प्रश्न आया था कि योग सिद्धि, योग अभ्यास किया, परंतु अगर योग का योग में सिद्धि ना हुआ तो क्या हो? अगर इस हमारा कार्य में योग साधन में अगर सिद्धि होने के पश्चात मृत्यु हो गया तो क्या हो? अथवा ये योग के मार्ग से अगर कोई अगर भ्रष्ट हो जाए तो क्या हो? तो भगवान तो बताया कि जो कल्याणकृत कश्चित नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, जो मंगल कार्य में युक्त तो हुए हैं उसके लिए कुछ कभी भी कुछ अमंगल नहीं। जो एक बार एक मंगलमय राह को ग्रहण किया है उसके लिए दुर्गति या अमंगल या भ्रांत पथ में जाने का कोई संभावना नहीं। हो सकता है चले जा सकते हैं भक्ति मार्ग से, योग के मार्ग से, बल्कि अगले जन्म में उसको या तो योगी के कुल में जन्म होगा, नहीं तो विचारवान ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, नहीं तो समृद्धशाली बहुत ऐश्वर्यशाली संपत्तिशाली वित्तवान परिवार में, वैश्यकुल में या क्षत्रिय परिवार में जन्म, और अगला जन्म में भी उसको संभावना मिलेगी क्योंकि वो योग अभ्यास किया है, उसलिए तुरंत ही योग के प्रति मतलब भक्ति के मार्ग के प्रति उसको आसक्ति का उत्पत्ति हो। तो ऐसे बताने के बाद हाँ भगवान अंत में क्या, इस अध्याय के अंत में क्या बताया, तपस्विभ्यो अधिको योगी, सारे तपस्वियों में से भी अधिक है योगी। ज्ञानीभ्यश्च ज्ञानीभ्योपि मतोधिक, ज्ञानी से भी बढ़कर है योगी। अच्छा पिछले अध्याय में भगवान क्या बोला है, कर्म से कर्मी से ज्ञानी अधिक, क्योंकि ज्ञाने परिसमाप्यते, सारे कार्य का समाप्ति ज्ञान में होता है, सारे कर्म का परिसमाप्ति ज्ञान में होता है। बल्कि यहां भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी से भी अधिक है जो ज्ञानी भ्रष्ट मतोधिक कर्मी भ्रष्ट अधिको योगी, कर्मियों से भी बढ़कर है योगी, तस्माद योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी बनो। कितना सुंदर उपदेश है, बल्कि इससे बढ़कर भी और भी सुंदर उपदेश भगवान अगला श्लोक में बताया। क्या बताया? योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते जो मां सा मे युक्त तमो मत। अर्थात योगी नाम ओपि सर्वेषां, समस्त योगियों के बीच, समस्त योगियों के मत बीच सर्वेषां, योगी नाम अपि सर्वेषां, जो मद गते नान्तरात्मना, जिसके अंतरात्मा मेरे प्रति आशक्त हुआ है, मद गते नान्तरात्मना, और जो श्रद्धावान, जो श्रद्धाशील व्यक्ति, श्रद्धावान व्यक्ति, भजते जो मां, जो मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सा मे युक्त तमो मत, वो हमसे सबसे अंतरंग रूप में, दृढ़ रूप में, सर्वश्रेष्ठ रूप में मेरे साथ युक्त। ये है षष्ठ छठे अध्याय का भगवान का अंतिम उपदेश। तो तस्मात योगी भवार्जुन, कैसे योगी बनना चाहिए? योगी नाम अपि सर्वेषां, मतलब भक्ति योगी, भगवान को भक्ति करना, तभी हम भगवान के साथ पूर्ण रूप से युक्त हो पाएंगे, हो सकते। हरे कृष्ण। तो आज मेरा कुछ काम है तो हमको अब जाना है, नहीं तो थोड़ा कीर्तन करता, बल्कि आप लोग कीर्तन करते रहिए, कीर्तन करना। ओके, हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे।